हुए जो था
इत्यादि है, तो ये सब लोग सब सिद्ध थे। उन लोगों ने इस स्थान को देखा कि ये स्थान बड़ा निर्जन है और ब्रह्मा जी का तपस्या का स्थल है, इसलिए अपने नाथ को अर्थात तो अलवर नाथ, अलवरों का नाथ, सिद्ध महापुरुषों के जो नाथ नारायण हैं, चतुर्भुजी नारायण, उन्होंने इनकी यहाँ पर इस स्थान में आकर के जगन्नाथ जी के निकट ही उसकी स्थापना की और बहुत दिन तक पूजा पाठ करते रहे। कुछ दिनों में 1200 ब्राह्मणों के घर, कुमा उनका नाम, ब्राह्मणों का जाति का नाम, वो लोग 1200 घर वहां से यहाँ पर आए और बस गए और ठाकुर जी की परंपरा अनुसार से पूजा करने लगे। एक समय की बात है कि उनका जो पुजारी था ठाकुर जी का, इनका, वो कहीं बाहर जाने लगा। उसने अपने लड़के को कहा, छोटे से बच्चे को, जब बेटा तुम इनकी पूजा पाठ कर देना और भोग लगा देना। उसने कहा मंत्र तो कुछ जानता नहीं, अच्छा तुम भोग तो दे देना और इनकी पूजा कर देना, पुष्प चढ़ा देना चरणों में और कहना जैसे स्नान कर लो ठाकुर जी, और भोग दे करके कहना जे ठाकुर जी आप खा लीजिए, ये कह देना। अच्छा ठीक, वो चला गया, 5-7 दिन तक नहीं आया। इस बच्चे ने, मैया ने भोग बनाया और थाल में ले करके ठाकुर जी के सामने गया, बोला जे ठाकुर जी हम तो मंत्र नहीं जानते हैं और मैं अपवित्र हूँ, तो अभी हमारे पिताजी ने कहा इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ, ये आप प्रसाद पा लीजिए, भोग लगा लीजिए, और ये कह करके दरवाजा बंद कर दिया और बंद करके बाहर में आया। लड़के के स्वभाव से कुछ लड़के बाहर में खेल रहे थे, उनके साथ में खेलने लग गया, भूल गया जो ठाकुर जी को मैंने भोग दिया है, और भूल करके 1 घंटा हो गया खेलता रहा। इतने में मैया आई, अरे भोग उठाया नहीं तूने, तो मैया तुम्हें भूल गया, तो जाओ जाओ जल्दी से, वो ठाकुर जी प्रसाद करके रख दिए हैं, उसको ले आओ, उनको हाथ माथ धुला करके और फिर ले आओ। वो जब भीतर गया तो वो पहले कह रहा था ठाकुर जी मैं मंत्र तंत्र तो जानता नहीं, आप जरूर खा लेना और नहीं खाएगा तो हम प्राण छोड़ देंगे, क्योंकि बाबा आएगा पिताजी और हमको मारेगा, इसलिए तुम जरूर खा लेना, मंत्र तो हमको याद नहीं। तो जा करके देखा तो वो खाया नहीं। अजय ठाकुर जी आपने खाया नहीं, आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे और हम प्राण प्रत्याग कर, ये कह करके फिर बाहर आया, तो फिर ठाकुर जी ने करके सब कुछ खा लिया, एक भी रोटी नहीं रखा अथवा एक भी चावल का दाना नहीं रखा, सब खा गए और पानी जो दिया था वो भी पी गए। अब उसको विश्वास है यहाँ ठाकुर जी ने तो खा लिया, बड़ा प्रसन्न होकर के वो थाली लेकर के मैया के पास में गए, मैया ठाकुर जी खा लिए हैं, खा लिए हैं, अरे ठाकुर जी खाते हैं, आ तो खा लिया, तुमने कहा हमने भोग लगाया वो खा लिया, अरे ठाकुर जी कैसे खा लेंगे, अच्छा ठीक है कल देना। फिर कल रसोई बनाई और ये बच्चा गया, कहा जी आज मैं देखूं मुझे कैसे खाते, तो वो चली गई, वो भी रही। बच्चे ने वैसा कहा ठाकुर जी मैं तो मंत्र तंत्र नहीं जानता, तुम खा लेना और नहीं खाएगा तो हम भी नहीं खाएंगे, ये समझ रखना। ठाकुर जी ने फिर खा लिया, आचार्य सचमुच में ठाकुर जी खा ला, मैया ने देखा जैसे तो खा लिया सब, बड़ी प्रसन्न भाई। 4-5 दिन के बाद में उसका पिताजी आया, तो उसकी मैया ने अर्थात गृहिणी ने अपने पति को कहा, आप तो इस बच्चे को कह गए, तो ये बच्चा तो भोग देता, ठाकुर जी सब खा लेता है, कुछ रखता नहीं है, तो ऐसे कैसे होते, ये झूठ बात है, कोई गिलहरी आकर के खा लेगी, मैंने कोई गिलहरी मैंने
काटबिराली
है तो खे जाए, अथवा एक छेले की महा दूध तो ठाकुर के नाम कर दिया, निजे खे दिया थाली टा खाली दुनिया से बदमाश छेले थी। अच्छा अमी आज के देखो जे मैं देखूंगा आज ये क्या हो रहा है, बस वो जाकर के कोने में छिप गया जिसको कोई ना देखे, और ये बच्चा जा करके वह भोग दिया। कहा ठाकुर जी अभी पिताजी हमारे आए नहीं, मैंने वो सिखला दिया था जो तुम कहना जब पिताजी नहीं आए हैं तो उनकी बात भोरी भारी बात मान लिया छोटे बच्चे ने। कहा जाए पिताजी नहीं आए, ठाकुर जी जैसे रोज खाते थे ऐसे आज भी खाइए, और नहीं खाएंगे तो याद रखना मैं नहीं खाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। तो देखे वो देख रहा था ये ठाकुर जी उतरे सिंहासन से, यही ठाकुर जी, और उतर करके और दोनों हाथों से खाया और पानी पी करके तृप्त होकर के जे ही जाने वाले थे, इतने में वो उसका पिताजी आकर के ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी को कहा अरे ठाकुर जी अब वो पत्थर के बन गए, उसके हाथ पड़ते ही प्रतिमा हो गई। कहे ठाकुर जी आप सपने खा लिए हम लोग क्या खाएंगे, आप थोड़ा सा तो रख देते हम लोगों के लिए, हम हमारी जीविका कैसे चलेगी। अरे नहीं ठाकुर जी ऐसा मत करना कभी। ठाकुर जी बोले जा रहा है अच्छा आज से तुम लोग जो देगा हम नहीं खाएंगे, हम तो बच्चे के अनुरोध से खा लिया, तुम्हारे कहने से मंत्र से नहीं खाया। बच्चे में ऐसी भक्ति थी और निष्कपट हृदय से उन्होंने कहा इसलिए मैंने खा लिया, अब से मैं तुम्हारा दिया हुआ कोई भोग नहीं खाऊंगा। अच्छा तब हम लोग आपको दिखला करके अरे तुमको हमारे बात पर भी इतना विश्वास नहीं है, जाओ आज से तुम्हारा जो 1200 घर का ब्राह्मण था धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारे वंश में कोई नहीं रहेगा और इस बच्चे को लेकर के हम बैकुंठ में अपने पास में ले जाएंगे। अब तुम लोग देखो धीरे 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 उसके वंश के जितने थे सब मर करके खत्म हो गए और ये बच्चा बाकी रहा। ठाकुर जी उसको बैकुंठ धाम में लेकर के चतुर्भुज मूर्ति दे करके और उसको वहां पर लेकर के, अब कोई पूजा करने वाला नहीं। अच्छा ये समय का कब का है, ये प्रताप रुद्र राजा जी के जो पिताजी हैं पुरुषोत्तम जाना के समय की ये बात है। राजा ने सब राजा को संप दिया ये ठाकुर जी स्वप्न दिया, देखो मैं बहुत दिनों से खाया नहीं, तुम जल्दी से कोई व्यवस्था करो, कोई पुजारी नहीं है, सब पुजारी लोग मर गए इसलिए जल्दी से कोई व्यवस्था करो। तो उन्होंने 3 ब्राह्मणों को उनके परिवार के साथ में भेजा, एक भारद्वाज गोत्रीय, एक वाशिष्ठ गोत्रीय और एक और आदमी को भेज दिया, जाओ उनकी सेवा व्यवस्था करो, काफी जमीन इत्यादि सब थी तुम सब प्रकार से व्यवस्था करो और हम भी तुम्हारी सेवा इत्यादि जो कुछ होगी हम सहायता करें। वो 3 ब्राह्मण आए, उस 3 ब्राह्मणों से क्रम से कम आज 30 घर या कितना 35 घर अब तक हैं और वो लोग क्रम से सेवा कर रहे हैं। उनमें से भारद्वाज गोत्रीय जो ब्राह्मण हैं वो ठाकुर जी का अर्चन और पूजन करते हैं और वाशिष्ठ गोत्र वाले जो दो थे, एक का लड़का वो ठाकुर जी का श्रृंगार करना, पुष्प धारण कराना और श्रृंगार इत्यादि करता है और एक तीसरा जो था वो उनकी रसोई बनाता है, सुपकार हुआ, सुआर हुआ, सुआर माने सुपकार, उनकी रसोई बनाते, इस तरह से उनका इस तरह से उठा करके सेवा आज तक सब चल रही है। ये ठाकुर जी का ये इतिहास इस प्रकार का है। महाप्रभु जी चैतन्य चैतामृत में उल्लेख है, उल्लेख अच्छे 5 बार एखने आश्वार मोटा मोटी भावे महाप्रभु बहु बार एखने ऐसे प्रति बसरे अनवसर काले ते अर्थात जगन्नाथ देव जखन दर्शन है ना स्नान यात्रा करने के बाद में उनको बुखार आ जाता है और पेट भी पतला हो जाता है, तो लक्ष्मी जी उनको घर से बाहर नहीं जाने देती, घर में रखती हैं इसलिए कोई दर्शन नहीं कर सकता है। और उनको पाचन हजमी और शरबत बना करके जिससे कि उनका हजम हो जाए और बुखार उनका दूर हो जाए इसलिए चूर्ण इत्यादि देते हैं और किसी को दर्शन नहीं देने उनको दूर से भगा देती हैं, दरवाजा बंद करके रखती हैं। ठाकुर जी तो चाहते हैं कि मैं निकलूँ और भक्तों को दर्शन दूँ किंतु लक्ष्मी जी किसी प्रकार से जाने नहीं देते। उस समय ठाकुर जी दर्शन किसी को नहीं देते तो महाप्रभु जी आप प्रतिदिन जाते हैं दर्शन करने, और उनको दर्शन नहीं मिलता, तब उनको ये भान होता है जे कृष्णचंद्र जी अभी मथुरा या द्वारका चले गए, दर्शन नहीं होता। और गोपियों के जैसे भाव हुए, राधा जी का जैसा भाव हुआ, उसी भाव से वहाँ से यहाँ प्रति वर्ष आते हैं और यहाँ पर 9 दिन या कितना दिन, 15 दिन यहाँ रह करके प्रतिदिन इनका दर्शन करते हैं, जैसे वहाँ पर जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। दूसरा उल्लेख है राय रामानंद जी के पिता का नाम भवानंद पट्टनायक था,
राय भवानंद
वही पट्टनायक, उनके 5 पुत्र हैं। ये 5ों पांडवों के अवतार माने जाते हैं, 5 अवतार तह माने 5ों पांडव। भवानंद होच्छेन पांडु आतहर 5 पुत्र मध्य प्रथम होच्छेन गोपीनाथ पट्टनायक ज्येष्ठ, आ द्वितीय होच्छेन राय रामानंद, तृतीय
सुधानिधि,
चतुर्थार के वो पंचम होच्छेन
बानीनाथ।
ए 5 जन एरा 5ों पांडव महाप्रभु तारा अत्यंत सेवक। एखन राय रामानंद सम्बन्धे तो अपना जाने नहीं, तिनी महाप्रभु अत्यंत प्रिय और महाप्रभु अंतरंगजन 3.5 जनेर मध्य 1 जन, द्वितीय जन होच्छेन स्वरूप दामोदर और तृतीय होच्छेन सिखी माइती और अर्धेक जन होच्छे सिखी माइतीर वृद्धा 85 बसरेर भगिनी माधवी देवी। एखन एई राय रामानंदेर संगे कि भवानंद संगे और सिखी माइतीर सम्बन्ध भ्रातुष्पुत्र होच्छेन भवानंदे, एई जन्य भ्रातुष्पुत्री होच्छेन माधवी देवी एई भवानंदे, और भाई अथवा भगिनी एरा 2 जन राय रामानंद।
ये तो पट्टनायक एरा माइती की कोई भाई
चाहिए उपाधि पे
उपाधि रंत
राइट अजम उपाधि
एकन ओरा वो एक ग्रामे ते था तो जेखाने हमारा बसे छिलाम ओई ग्रामे नाम होच्छे बंटी ना
महाती
बेंकन
सब
बेंडपुर
बेंडपुर बेंडपुर हमारा ओखने ते छिलाम, अपना 3 घंटा लेट कर लेन ये जने देखा होय हमरा 3 घंटा प्रतीक्षा करते छिलाम जे ओई राय रामानंद पैतृक जे भवन आर सिखी माइती आर
माधवी
भगिनी माधवी देवी ओखने के दर्शन करि देव स्थान, किन्तु बाई चांस अपना देर होलो ना हमरा दर्शन आर हमरा फिर एसे। एखन उनार बड़ो भ्राता छिलेन राय रामानंदेर, तार नाम छिलो गोपीनाथ पट्टनायक, তিনি এই বিভাগে তিনি জমিদার ছিলেন, 2 লাখ টাকা প্রতিদিন প্রতি বছরে তাহার ওই ট্যাক্স তিনি বসুল করতেন আর রাজাকে দিতেন, আর যা লাভ যা ছিল 2 লাখ টাকার পরে ওই সবগুলি তাহার হতো, হয়তো 5 লাখ টাকা বসুল করতেন কিন্তু 2 লাখ টাকা তাহাকে দিতেন, কিন্তু 1 বছরে তিনি দেন নাই, সব কিছু খেয়ে নিয়ে আত্মসাত করে নিয়েছেন। তখন রাজা ছিলেন প্রতাপ রুদ্র, তিনি তার ছেলেকে বললেন যে সে দেখো বড় ছেলেটাকে বড় জানা, বলে যে বড় জান মানে
যুবরাজ
তুমি যাও তো দেখো ব্যবস্থা করো তো টাকা গুলো শুল কর আনে তাকে দণ্ড দে। তব ও উসকে পাশ মে গয়ে উসে কাহা যে তুম 2 লাখ রুপিয়া হামারে ইসমে দে দো জমা দে দো। उनका जैसे हम तो वो रुपया वो हमारा घटी हो गया वसूल नहीं हुआ, और तो सब विषय लोग तो नहीं खे फेले थे खा लिया था सब, कहने पर भी सुना नहीं। तो उनके पास में बहुत से घोड़े थे, उन्होंने कर्मचारियों को हुक्म दिया इनके सब घोड़ों को ले आओ और उसको बेच करके हम वो रुपया वसूल करेंगे, नहीं तो इनका घर कुरूप करेंगे और संपत्ति कुरूप कर देंगे। किंतु बड़े भारी प्रतिभाशाली गोपीनाथ पट्टनायक थे, उन्होंने उन लोगों को कोई को जाने नहीं दिया और घोड़ा भी नहीं दिया रुपया भी नहीं दिया, और उनको हंसी ठट्ठा की चिटकारी उनार कर ले ये उकी कर बे हमार
का कर ले।
तब वो युवराज बिगड़ करके महाराज प्रताप रुद्र के पास में गया और जा करके कहा जब ये पैसा नहीं देता सब हजम कर गया और देगा नहीं, जैसी इच्छा हो तुम इसे वसूल कर दो। उन्होंने कहा जो 15 दिन के अंदर में तुम रुपया दे दो और नहीं तुमको फांसी पर झूला देंगे। चौंगे थे चढ़ाई को चौंग पर माने फांसी दे देंगे। तखन एखन माथा नड़े छे रुपया व्यवस्था करते पारलो ना, तखन तार सब वंशे ताके धरे निये गेलो निये जे पुरीते कि कटके थे আর ওই চঙ্গেতে চড়াবে। তখন গ্রামের লোক যে আর তার কাছে মহাপ্রভু কাছে বললেন, উনোনে কহা যে প্রভু আপ একবার কহ দিজিয়ে রাজা কো আপকি বাত মান জায়গা, আপকা প্রিয়ত রামানন্দ হ্যায় উসকা ভাই ইয়ে লোক হ্যায় কি ইয়ে জরুর মহাপ্রভু সুন লেঙ্গে অর রক্ষা করবো। মহাপ্রভু কহা জেসে হম নাই হম ইয়া রহেঙ্গেই নাই, হম আয়ে ভজন করনে কে লিয়ে और विषय की बात हमारे कान में जाती, हम यहाँ स्थान से चले जाएंगे। गोविंद को कहा जे हमारा दुर्गोर कपिल लेकर के चलो, हम आलालनाथ में जाएंगे। और जाने के लिए तैयार होकर के आने लगे तो काशी मिश्र जी वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा जिसे आप विषय की बात सुनते क्यों, आप यहाँ स्थान से मत जाइए, यहीं रहिए। उन्होंने कैसे रहे, बानीनाथ का क्या खबर है बतलाओ तो, जे आप बानीनाथ की बात क्यों पूछ रहे हैं, नहीं गोपीनाथ
गोपीनाथ
की बात क्यों पूछते हैं। तो यही तो मैं चाहता हूं कि उसकी बात याद करूं, किंतु विषय का ये सब बात सुनने से हमको भी ऐसा हो गया है, इसलिए विषय लोगों के पास में रहना उचित नहीं है, हम अभी अलालनाथ में चल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से महाप्रभु जी तो रहे। उन्होंने कहा तब तो स्वरूप दामोदर और सब लोग आकर के बोले जे प्रभु उसके लिए आप कुछ कर दीजिए, जैसे वो बचे जाए राजा से कह दीजिए, हम सन्यासी हो करके और राजा से भीख मांगने जाएं इसके लिए प्राण के लिए हम नहीं जाएं। इसलिए विषय लोगों का तो अन्न नहीं खाना चाहिए और विषय लोगों की बात नहीं सुनना चाहिए, उनके संपर्क में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ऐसा ही होता है। किंतु भीतर भीतर मौन तार छटपट करते जब ओके की रकम है बचान हो जाए, এই জন্য বললেন যে আচ্ছা তোমরা একটি কাজ করো, জগন্নাথের কাছে যে প্রার্থনা করো, তিনি জগতের নাথ, তিনি অবশ্যই রক্ষা করবেন। বাসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা যায় জগন্নাথ কাছে গিয়েছে। আর এদিকে হরিচন্দন যে সেনাপতি আর রাজা তিনি মন্ত্রীও ছিলেন, তিনি যে বললেন যে প্রভু একে মেরে কি হবে, আপনি যুবরাজকে বললেন যে ওকে ছেড়ে দেন আর ঘোড়াগুলিকে নিয়ে আর ওটা
নিলাম
বসুল করলে আর বাকি পরে পরে ক্রমে 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 ধীরে ধীরে গো দিতে রহেগা, মারনে সে তো এক পয়সা নেই মিলেগা। বললে ঠিক আছে ঠিক, জো রাজকে তখন ডেকে বলি যাও একে ছেড়ে দাও আর ঘোড়াগুলিকে নিয়ে লো, যত ঘর থেকে যা টাকা পয়সা আছে সবগুলি নিয়ে লো, বাকিগুলি ধীরে 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 চালাকি করে কিছু তো অসুল হোক, এই বলে তাকে ছেড়ে দিল। মহাপ্রভু প্রেরণা দিয়ে দিয়ে একে ছেড়ে দিল। তখন ভক্তগণের ভারী আন উনি ছেড়ে দিলেন আর বাড়ি আসলো, তখন সকলে বলি যে মহাপ্রভুর জন্যই তা ছুটেছে, উপরে থেকে শাসন করেছেন,
বাঙালি বান দিয়া হ্যায়
উপর সে শাসন কিয়া, কিন্তু ভিতর সে ये चाहते थे कि इसका रक्षा हो जाए, इसीलिए छूट गया। एक द्वितीय बार महाप्रभु एकाने ऐसे छिलेन कि नाथ किंतु प्रसंग आछे। आर तृतीय बार होय छिलो
दक्षिण देश जाते समय,
दक्षिण देश जावार समय নিত্যানন্দ প্রভু ইত্যাদি যত স্বরূপ দামোদর রায় রামানন্দ আর বাকি লোক সব এই পর্যন্ত এসেছিল। মহাপ্রভু রাত্রে এখানে ছিলেন আর এখানকার সব ভক্তগণ মহাপ্রভু কা দর্শন কিয়া আর দর্শন দে করকে কৃতার্থ কিয়া আর দূসরে দিন সবকো ইয়াহ ছোড় করকে কেবল কালা কৃষ্ণ দাস কো লেকর কে ইয়াহ সে সমুদ্র কে তীরে 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 চিল্কা হ্রদ হতে হুয়ে দক্ষিণ কি তরফ নিকলে। और फिर वहां से लौट करके जब आए तो इस स्थान पर रहे एक रात और काला कृष्ण दास को भेज दिया पुरी में। वहां से नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य सब जितने भी भक्त थे ये सब लोग वहां से आए और फिर महाप्रभु के साथ में कीर्तन करते हुए फिर पुरी में चले गए। और एक बानीनाथ का या किसका था एक बार और
लौटते समय भी आए थे,
ये पांच बार आने का उल्लेख
छोटे हरिदास को दंड के समय,
छोटे हरिदास को दंड देने के समय में जब छोटे हरिदास को कहा जब द्वार माना त तखन आर खावा दावा छेड़े दिलो, सब खाना पीना छोड़ दिया। उस समय में जितने भक्त लोग थे सब महाप्रभु जी से परमानंद पुरी से कहा, परमानंद पुरी महाप्रभु के गुरु वर्ग हैं इसलिए उनकी बात टाल नहीं सकते। इसलिए परमानंद पुरी भी आकर के बोले जो प्रभु कृपा कर दीजिए, उसने छोटा सा बच्चा क्या अपराध हुआ, एक बूढ़ी से थोड़ा सा चावल मांग करके लाया। उनका जच्चा तब आप सभी लोग छोटे हरिदास को लेकर के यहाँ पर रहिए और हम जाते हैं अलालनाथ। तो उस समय का एक उल्लेख मिलता है। वैसे प्रतिवर्ष वर्ष में वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आकर के इनका दर्शन करते थे, राधा भाव में विभावित होकर के कृष्ण का अनुसंधान करने के। उस स्थान में हम लोग आए हैं खूब प्रेम के साथ में, यहाँ की धूली सिर पर दे करके महाप्रभु जी की कृपा प्रार्थना करें हम लोग, बस इसी से हमारे जीवन साथों का किसी न किसी दिन जरूर हमारे ऊपर में कृपा होगी, यही प्रार्थना करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। इधर ठाकुर जी का शायद आरती होगा, हो गया है, आप लोग बैठिए
थोड़ा थोड़ा सी।
Do sara re ji जया जया देवा हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि वासुदेव वाल भजनंद दुलाल जया जया देवा हरे हरि अभिनव भजनंद दुलाल जय जय राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि वासुदेव वाल भजन हरि गोविंद गोपाल हरि वासुदेव वाल भजनंद दुलाल जय जय देव
बहुत सुंदर सुबह ऐसे नहीं महाराज
एक अच्छे राय रामानंद তার বংশেতে যে গ্রন্থ লিখা হয়েছিল তালপত্রেতে সেই সমস্ত গ্রন্থ তার মধ্যে রায় রামানন্দের লিখিত রায় রামানন্দের দ্বারা লিখিত রায় রামানন্দের লিখিত জগন্নাথ বল্লভ নাটক তারপরে আর একটা কি গ্রন্থ তার বংশেতে আর যাহারা লিখেছেন গ্রন্থ তাছাড়া চৈতন্য চৈতামৃত তালপাতাতে হস্তলিখি আরো আরো গ্রন্থ সব এর মধ্যে আছে
আর ওর মধ্যে এই সবগুলি দর্শন করুন আর সুরক্ষিত আছে এই সবগুলি তালপাতাতে লেখা 500 বছর পূর্বেকার এই সবগুলি আর এই যে তলোয়ার দেখলেন তলোয়ার হচ্ছে রায় রামানন্দ যখন
গভর্নর ছিলেন
গোদাবরী তটেতে
রাজমহেন্দ্রী
ওই প্রায় এই দক্ষিণ দেশে ওই মাদ্রাস পর্যন্ত তখন বিহার আর বাংলার অনেক অংশ না রাজ্যতে ছিল তখন ওই দক্ষিণ ভাগে তিনি গভর্নর ছিলেন শাসক তিনি ছিলেন তখন তার হাতেতে এই তলোয়ার ছিল তলোয়ার ব্যবহার করতেন না ভগবান নাম ব্যবহার করতেন ভগবত ভাব ব্যবহার করতেন যা শিখবার জন্য স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু তাহার নিকটেতে এসেছেন রায় রামানন্দ পূর্বলীলাতে বিশাখা দেবী কৃষ্ণের রূপ হয়েছে যে আমি রাধা ভাব আস্বাদন করব রাধায়া প্রণয় মহিমা কীদৃশ রাধারানীর যে প্রণয় মহিমা সেটা কি রকম আবার প্রণয় কাকে বলে সেটি বুঝতে হবে প্রেমের বৈচিত্র্য হচ্ছে প্রণয়
प्रारम्भ थीके भजनेर प्रारम्भ ओई होच्छे श्रद्धा। श्रद्धा दो प्रकारे एकटी लोभमयी श्रद्धा আর দ্বিতীয় হচ্ছে শাস্ত্র শাসন দ্বারা উৎপন্ন যে শ্রদ্ধা। দুটা এক নয়, একটি বীজের থাকতে মনে হচ্ছে দুইটি, কিন্তু তার বীজও হচ্ছে অন্য রকমের। লোহময় শ্রদ্ধা রসিক বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধান্তবিদ সদাচার পারায়ণ অথচ রসিক, এদের সঙ্গে তে হরিকথা শ্রবণ করলে যে শ্রদ্ধা ওটা লোহময় শ্রদ্ধা। তার উপরে অঙ্কুশ বেশি থাকে না মর্যাদার, ওই প্রারম্ভ থেকেই। আর দ্বিতীয় হচ্ছে শাস্ত্র ভয়তে যে শাসন যুক্ত মর্যাদাময়ী যে লোভ
শ্রদ্ধা,
ওইটি বৈদিক ভক্তির জননী। জননী মানে এখানে বীজ। সেই শ্রী শ্রবণ কীর্তন দ্বারা দুটি অঙ্কুরিত পুষ্পল্লবিত আর তারপরে পুষ্পিত হয়ে যে